नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी,
पुस्तक का नाम है सतयुग की वापसी और इसे लिखा है पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने।
हाँ, और ये जो पुस्तक है ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा है।
अच्छा
जी, क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला ये 1988 से 1990 के दौरान उन्होंने तैयार की थी।
क्रांतिधर्मी साहित्य मतलब विचारों में क्रांति लाने वाला साहित्य।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव ने तो वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से ये कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
ज्ञान शरीर,
हाँ, उन्होंने साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा और ये भी आग्रह किया कि इसे जन जन तक पहुँचाया जाए। तो ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये उनके विचारों का एक स्थायी रूप है।
ज्ञान शरीर, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस ज्ञान शरीर का मतलब इस पुस्तक का केंद्रीय विचार क्या है?
देखिए, पुस्तक एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाती है। वो पूछती है कि आज विज्ञान इतना आगे है, बुद्धि इतनी बढ़ गई है, फिर भी दुनिया में संकट क्यों है?
हाँ, ये तो है। प्रदूषण, लड़ाई झगड़े का माहौल, अपराध, घर घर में कलह, ये सब कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहा है?
बिल्कुल यही सवाल पुस्तक कहती है कि ये सब क्यों हो रहा है? इतनी अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी हम दुर्गति की ओर क्यों जा रहे हैं?
तो क्या जवाब देती है पुस्तक?
पुस्तक कहती है जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी आंतरिक स्थिति में।
आंतरिक स्थिति में मतलब?
मतलब ये कि हमने बाहरी साधन तो बहुत जुटा लिए, ज्ञान भी बढ़ा लिया, कुशलता, संपन्नता, समर्थता सब है।
हाँ,
पर नतीजा क्या है? विनाशकारी। पुस्तक इसे कहती है लेने के देने पड़ रहे हैं, जैसे जैसे कोई फूटे घड़े में पानी भर रहा हो।
फूटे घड़े में पानी भरना, तो ये घड़ा फूटा कहाँ से है, असल कारण क्या है?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार मूल कारण है हमारी भाव संवेदना का सूख जाना।
भाव संवेदना यानी इमोशंस, फीलिंग्स।
उससे भी गहरा मतलब करुणा, सहानुभूति, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की क्षमता, वो कम हो गई है।
अच्छा,
और जब ये संवेदना नहीं रहती तो इंसान बस अपने स्वार्थ में जीता है, निष्ठुर हो जाता है। पुस्तक में तो इसके लिए नर पिशाच जैसा कठोर शब्द भी इस्तेमाल हुआ है।
ओ, नर पिशाच, ये तो बहुत बहुत ही तीखा शब्द है।
जी, क्योंकि संवेदना के बिना मनुष्य वैसा ही बन जाता है, अपनी सारी योग्यता, सारी संपन्नता का दुरुपयोग करता है।
ये तो समस्या की जड़ हुई, बड़ी गहरी बात है। लेकिन क्या पुस्तक कोई आशा भी जगाती है, कोई रास्ता सुझाती है?
हाँ बिल्कुल, और यही पुस्तक का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है।
क्या है वो?
पुस्तक कहती है कि ये जो भाव संवेदना है ना, यही हमारी चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है।
चौथी मतलब कुशलता, संपन्नता और समर्थता के बाद?
उनसे भी ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे उदाहरण दिए हैं कि क्रोच पक्षी के दुख से वाल्मीकि की संवेदना जगी तो वो आदिकवि बन गए।
हाँ, रामायण की रचना हुई।
बिल्कुल, या जैसे ऋषियों की अस्थियां देखकर श्री राम की करुणा जागी तो उन्होंने राक्षसों के विनाश का प्रण लिया। तो महान काम, सेवा, ये सब गहरी संवेदना से ही जन्म लेते हैं।
अच्छा, तो मतलब सतयुग या सच्ची प्रगति बाहर के साधनों से नहीं बल्कि अंदर की इस संवेदना से आएगी।
एकदम सही। पुस्तक का तर्क है जहाँ संवेदना है वहीं स्वर्ग है, वहीं सतयुग है। सिर्फ बुद्धि या तकनीक से समस्याएं हल नहीं होंगी। समाधान है मनुष्य के भीतर देवत्व जगाने में, और उस देवत्व का आधार यही भाव संवेदना है। उसके बिना तो सारी तरक्की, वो कहते ना, एक रुपया कमाना और 100 का घाटा उठाना, वैसी है।
तो ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जरूरत है।
बिल्कुल, एकमात्र विकल्प बताया गया है इसे।
पुस्तक में वो दानव का वर्ण और देव का वर्ण की भी बात आती है, क्या वो इसी से जुड़ा है?
हाँ हाँ, उसी का विस्तार है ये। दानव का वर्ण मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, जमा करना, उपभोग करना, ये अंधी दौड़।
और देव का वर्ण?
वो है करुणा, आत्मीयता, दूसरों के सुख दुख को अपना समझना। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है, दूसरों के लिए जीता है, तभी तो संसाधनों का सही उपयोग होगा, शोषण रुकेगा, सहयोग बढ़ेगा, है ना?
सही बात है।
तो पुस्तक कहती है कि ये जो आंतरिक बदलाव है जिसे पूज्य गुरुदेव ने मनस्थिति का परिष्कार कहा है, यही बाहरी परिस्थितियों को बदलेगा, यही उज्जवल भविष्य लाएगा।
मनस्थिति का परिष्कार, और उनका ये भी मानना था कि 21वीं सदी इसी भाव संवेदना को जगाने की सदी होगी।
जी हाँ, उनका ये विश्वास था।
तो कुल मिलाकर सत्ययुग की वापसी का सार यही है कि सच्ची प्रगति के लिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक संवेदना का विकास बहुत जरूरी है।
दोनों का संतुलन चाहिए।
बिल्कुल।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि कहीं हम प्रगति को सिर्फ बाहरी मतलब भौतिक या बौद्धिक पैमाने पर ही तो नहीं माप रहे। क्या ये भाव संवेदना के बिना जो विकास है, जो कुशलता, संपन्नता, समर्थता हमने हासिल की है, कहीं वो अधूरी या शायद खतरनाक तो नहीं?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर यानी इस क्रांति धर्मी साहित्य का ये चिंतन आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है।
निश्चित रूप से। और ये हमें एक और सवाल के साथ छोड़ जाता है शायद कि अगर हमारी समस्याएं वाकई संवेदना के अभाव से जुड़ी हैं, तो हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर इस संवेदना को फिर से कैसे जगा सकते हैं? आज के समय में इसके लिए क्या किया जा सकता है? इस पर विचार करना शायद बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, इस पर सोचना होगा।